छठवां, बैसाखियों वाली इमारतें, रमेश बख्शी, 1966। पृष्ठ संख्या 142। स्त्री पुरुष, पति पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिका के यौन संबंधों पर स्पष्ट रूप से लिखने वाले रमेश बख्शी का रचना जगत आधुनिक नगरीय परिवेश से संबद्ध है। डॉक्टर अतुल वीर अरोड़ा के अनुसार बख्शी जी के उपन्यास व्यक्ति चेतना के दंभ से रचे गए हैं और प्रयोग धर्मिता की इनमें एक अहमवादी मुद्रा झलकती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ परिशोध पत्रिका क्रमांक 17 1972 अंक 1। वे मूलतः एक मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं और कस्बाई वातावरण उन पर हावी रहता है। अतः बख्शी जी के इस उपन्यास में भी नगरीय परिवेश से संबद्ध नारी चरित्र उपलब्ध होते हैं। मुख्यतः इस उपन्यास में तीन नारी पात्र आए हैं, मिस जायसवाल, मिस वसुधा और नायक की पत्नी। मिस जायसवाल हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका हैं और मिस वसुधा एक चित्रकार, और उसकी रुझान एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर विशेष रूप से है। पृष्ठ संख्या 143। प्रस्तुत उपन्यास का नायक पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से परिचालित एक अहमवादी कुंठित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उपन्यास में उसे कोई नाम नहीं दिया गया है। कदाचित यह इस बात का द्योतक है कि उसका अपना कोई निजी व्यक्तित्व नहीं, जो कुछ भी है उधार और आयातित है। दूसरे, उसका चिंतन भी स्पष्ट न होकर अनेक मानसिक ऊहापोहों से ग्रस्त है। अतः हर लिहाज से हम उसे आधा अधूरा, अध कचरा, दिग्भ्रांत चरित्र कह सकते हैं। वह भी पश्चिम के यौन बुभुक्षित युवक युवतियों की भांति प्रेम के केवल शारीरिक धरातल तक ही पहुंच पाया है। इतना ही नहीं, वह उसे ही प्रेम कहता है और समझता है। आत्मिक या मानसिक प्रेम को वह महज दिमागी विलास, जीभ पर उगा कैंसर, बेहद गर्म देश में जमाई आइसक्रीम या च्युइंगम आदि समझता है। उसके इस दृष्टिकोण के कारण उसका जीवन एक पलायन और भटकाव के रूप में सामने आता है। उसके इस सोच का असर उक्त तीन पात्रों पर भी पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। मिस जायसवाल एक कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। वह स्वयं को अत्याधुनिक, ब्रैकेट में अल्ट्रा मॉडर्न और बोल्ड लेडी समझती हैं। उपन्यास का नायक पत्रकार है और मिस जायसवाल से उसकी भेंट ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी में होती है। मिस जायसवाल यौन स्वतंत्रता को ही शायद पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता का एकमात्र अभिलक्षण मानती हैं। इसीलिए अजंता टाइप जूड़ा बनाने वाली और होठों पर स्मित के कमल खिलाने वाली मिस जायसवाल पान सुपारी की भांति अपने शरीर को पेश करती हैं और ऐसा करते हुए अपनी बोल्डनेस का दंभ भरती हैं। वह पश्चिमी सभ्यता और सोच को आदर्श रूप में स्वीकार करती हैं। पश्चिम में उन दिनों वयस्क अनुभवी लोगों से प्रेम करने का फैशन चल पड़ा था। उनका मानना था कि वयस्क अनुभवी लोग अपनी परिपक्वता के कारण इमोशनल बकवास से परे रहते हैं। एक स्थान पर मिस जायसवाल कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये कुंवारे लोग बड़े बकवास होते हैं। प्यार इन पर अफीम की गोली सा असर करता है और असल में होता है वह चॉकलेट। वे ज़्यादा कुछ करेंगे तो नोच खसोट लेंगे। मेरे मन में उन सबके प्रति एक डिसलाइकिंग है। उनसे दोस्ती करने का मतलब है अपना वक्त जाया करना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ बैसाखियों वाली इमारतें, रमेश बख्शी, पृष्ठ संख्या 64। यह एक कामशास्त्रीय सत्य है कि युवा लोग इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, परंतु जहाँ तक फिजिकल फुलफिलमेंट का प्रश्न है, वयस्क अनुभवी गंभीर लोग उसमें अधिक सफल होते हैं। उनकी स्तंभ शक्ति भी नव सीखे नव युवाओं के की अपेक्षा अधिक होती है। मिस जायसवाल इसीलिए छोकरा टाइप युवकों को नापसंद करती हैं। दूसरे, उसकी यह वृत्ति उसकी सैडिस्टिक प्रकृति के कारण भी है। स्वयं अविवाहित रहने के कारण विवाहित युग्मों के प्रति उसकी अंतःचेतना में, ब्रैकेट में अनकॉन्सियस माइंड, एक छिपी हुई ईर्ष्या भावना है। जिसके कारण दूसरे की दाम्पत्य जीवन खंडित करने में उसे एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। वस्तुतः उसकी ये सैडिस्ट प्रकृति भी उसके मानसिक फ्रस्ट्रेशन का ही परिणाम है। रेखा उपन्यास की रेखा की भांति उसमें भी वासना का उद्दाम ज्वार मिलता है, परंतु विवाहिता होने के कारण रेखा अपनी यौन सुधा की तृप्ति चोरे छिपे करती है। वहां मिस जायसवाल खूब खुलकर खेलती है। महानगरीय परिवेश के कारण उसे 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा की भांति किसी से दबना नहीं पड़ता। पैराग्राफ चेन पृष्ठ संख्या 144। इस प्रकार प्रकृति एवं वैचारिक समानता के धरातल पर पत्रकार एवं मिस जायसवाल परस्पर सीमपस दृष्टिगत होते हैं, लिहाजा उनमें पत्नी भी चाहिए और प्रारंभ में दोनों में मित्रता स्थापित होती है, परंतु बाद में उन दोनों में ठन जाती है, क्योंकि पत्रकार का व्यक्तित्व एक हिपोक्रेट का व्यक्तित्व है। लाख आधुनिकता की बातों के बावजूद भीतर से वह पुरुष सत्ताक मध्यवर्गीय संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाया, अतः मिस जायसवाल की यौन मुक्तता को वह अधिक समय झेल नहीं सकता और अपने पुरुष अहम की तुष्टि के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। उस समय मिस जायसवाल उसे इमोशनल कुत्ते की उपाधि देती है। पैराग्राफ चेंज। पत्रकार को पुराने जीवन मूल्यों में आस्था नहीं है और नए जीवन मूल्यों को पचाने की क्षमता वह भी नहीं है, फलतः उसकी स्थिति त्रिशूल सी हो जाती है। इसके कारण वह अपनी पत्नी से भी खुश नहीं रह सकता। वैवाहिक जीवन को लेकर उसका दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण भौतिकवादी उपभोक्तावादी है। बहुत से लोग लतीफतन ढंग से कहते हैं कि 250 ग्राम दूध देने वाली गाय को पालने की क्या आवश्यकता है। ठीक उसी तरह पत्रकार भी चाहता है कि वैवाहिक जीवन की अपेक्षा किसी वेश्या से संबंध रखा जाए। महीने पखवारे में गए मेहमान की तरह सलाम मुजरे में डूबे रहे और घर जाकर आराम की नींद में सोए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ बैसाखियों वाली इमारतें, रमेश बख्शी, पृष्ठ संख्या 103। अतः पत्नी से उसका संबंध केवल शारीरिक धरातल पर ही है और उसकी पत्नी भी पति के घटिया फूहड़ और बनावटी तरीकों से परिचित है, अतः दोनों में रात दिन कलह होता रहता है। इस कलह से उबकर वह पत्रकार के घर को छोड़ देने का निर्णय करती है। इससे पत्रकार को बड़ी खुशी होती है, परंतु इसके पूर्व वह उसे पूर्णतया भोग लेना चाहता है। उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वैवाहिक जीवन की खुशनुमा स्मृतियों के स्थान पर वह नफरत की विभीषिका को साथ ले जाना पसंद करती है। पत्नी की अस्वीकृति पत्रकार के पुरुषत्व पर चोट करती है और वह बलात्कार पर उतर आता है। तब उसकी पत्नी नाखून और दांतों से उसे काटते हुए उसके अहम को करारी चोट पहुंचाती है और सदा के लिए उसके घर से चली जाती है। यह पत्रकार के पुरुष अहम पर पड़ा हुआ जोरदार तमाचा है। पैराग्राफ चेंज। तीसरा तमाचा उसे वसुधा के द्वारा रसीद होता है। अपने अखबार में पत्रकार वसुधा की पेंटिंग को लेकर तारीफ के पुल बांध देता है, यथा इन्वर्टेड कॉमा ओपन वसुधा टू लीड द कमिंग जनरेशन ऑफ एक्सपेक्टिंग पेंटिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ बैसाखियों वाली इमारतें, रमेश बख्शी, पृष्ठ संख्या 76। अतः वसुधा पत्रकार के निकट आती है। कुछ घनिष्ठता बढ़ने पर पत्रकार उससे जातीय सुख की मांग करता है। वसुधा समर्पण के पूर्व विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे पत्रकार मान्य नहीं करता, फलतः वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। वसुधा द्वारा दिया गया यह तीसरा प्रहार पत्रकार को भीतर से तोड़ देता है और वह दार्जिलिंग की ओर पलायन कर जाता है। पत्रकार का नारी विषयक दृष्टिकोण पूर्णतया भोगवादी है। इस दृष्टि से पुराने परंपरागत समाज से वह एक इंच आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ बंगाल की प्रसिद्ध चर्चित एवं क्रांतिकारी महिला लेखिका तस्लीमा नसरीन का निम्नलिखित विश्लेषण गौर तलब होगा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। नारी के लिए दो तरह की वृत्ति समाज में स्वीकृत थी, पहली दासी वृत्ति और दूसरी गणिका वृत्ति। जैसा जी में आए नारी को भोगने का अधिकार शास्त्र ने पुरुष को दिया है, पृष्ठ संख्या 145, नारी के लिए अपने शरीर को अवांछित संभोग से बचाने का अधिकार भी उसे ब्रैकेट में शास्त्र स्वीकृत नहीं था। नारी के लिए शिक्षा नहीं, धन नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नारी के लिए नहीं है। नारी का अपना कुछ भी पार्थिव या अपार्थिव नहीं हो सकता। प्राचीन समय में गाय, सवर्ण, गज, अश्व आदि के साथ साथ दान दक्षिणा के रूप में नारी को भी दिया जाता था। नारी को भोग्य वस्तु समझा जाता था, इसीलिए यहाँ गाय और घोड़ों के साथ साथ नारी का उल्लेख करने में कोई नहीं हिचकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ तस्लीमा नसरीन औरत के हक में पृष्ठ संख्या 24-25। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत उपन्यास में पत्रकार सतही तौर पर आधुनिक दिखते हुए भी भीतरी तौर पर वही सनातनी पुरुष है जिसकी मानसिकता उपर्युक्त पंक्तियों में दृष्टिगत होती है। सातवां, अनदेखे अनजान पुल, राजेंद्र यादव, 1963, पृष्ठ संख्या 145। राजेंद्र यादव जीवन के प्रगतिशील मूल्यों को रचनात्मकता की जद्दोजहद में लेखकीय प्रतिबद्धता, तटस्थता तथा संपूर्ण मानवीय ईमानदारी के साथ उकेरने वाले नई पीढ़ी के उन लेखकों में आते हैं जो अपनी वैचारिकता को कलात्मक रूप प्रदान करने का सन्निष्ठ प्रयास कर रहे हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात के बाद प्रस्तुत उपन्यास अनदेखे अनजान पुल साठोत्तरी हिंदी उपन्यासों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। रचना की श्रेष्ठता के आधार पर उसमें निरूपित दृष्टि और उस दृष्टि की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। नारी विमर्श को लेकर यादव जी अपने लेखक के प्रारंभ काल से ही उनके जबरदस्त पक्षधर रहे हैं। प्रस्तुत उपन्यास में उन्होंने नारी को एक स्वतंत्र सत्ता और व्यक्तित्व प्रदान किया है। हमारी इस सुदीर्घ परंपरा में नारी को कभी एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक मनुष्य के रूप में नहीं देखा गया। यहाँ यह ध्यातव्य रहेगा कि सन 1987 में अशोक मुखोपाध्याय द्वारा संपादित संकलित समर्थ शब्दकोश में पुरुष के समानार्थक शब्द में तो मानव, मानुष आदि शब्द दिए गए हैं, परंतु स्त्री के समानार्थक शब्दों में कहीं भी मनुष्य शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका सीधा साधा अर्थ यह हुआ कि पुरुष को तो मनुष्य समझा जाता है, नारी को नहीं। यहाँ यह ध्यानार्थ होगा कि उपर्युक्त शब्दकोश बंगला भाषा का थिसोरस माना जाता है। राजेंद्र यादव ने प्रस्तुत उपन्यास की निन्नी को न केवल मनुष्य समझा है बल्कि उसे मानवीय गरिमा से मंडित भी किया है। इस उपन्यास में लेखक ने नारी जीवन की एक अनछुई समस्या को उठाया है। उपन्यास की नायिका निन्नी एक निहायत ही सामान्य बल्कि काली कलूटी और कुरूपा लड़की है। कॉलेज में लोग उसे कल्लो परी के नाम से चिढ़ाते हैं। निन्नी अपनी उस कुरूपता के कारण बहुत खिन्न और दुखी रहती है। उसके पिता एक सामान्य सी हैसियत वाले निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति थे। विवाह के बाजार में ऐसी लड़की को खपाने के लिए दहेज के रूप में एक बड़ी रकम चाहिए। इतनी बड़ी रकम उसके पिता नहीं जुटा सकते। अपनी रूपहीनता को दूर करने की वह हर चंद कोशिश करती है, परंतु हमेशा निराशा ही हाथ पाती है। इसके कारण उसके मन में एक लघुता ग्रंथि बन जाती है। एक स्थान पर लेखक ने उसके संदर्भ में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, न वह सावरी थी न मीरा, न सबरी न अहल्या, बस दुखी, हताश, थकी मांदी, टूटी फूटी आत्मा थी जो शांति मांगती थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ अनदेखे अनजान पुल, राजेंद्र यादव, पृष्ठ संख्या 125। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 146। स्थिति की एक विडंबना यह भी है कि निन्नी के दूसरे भाई बहन कुरूप नहीं थे, अतः रूपहीनता का हीनता बोध उसके मानस पटल पर और भी गहराने लगता है। दूसरे समाज एवं अपने परिवेश से भी उसे निरंतर उपेक्षा और कटुता मिलती है, जिसके कारण उसकी लघुता ग्रंथि की बेल को और भी जल और खाद मिलता रहता है। शैशवावस्था तक रूपहीनता का यह बोध निन्नी को अधिक परेशान नहीं करता था, परंतु कैशोर्य को पार करने के पश्चात जैसे जैसे वह सामाजिक जीवन की वास्तविकता से परिचित होती जाती, उसकी मानसिक यांत्रणा भी समय व्यतीत होने के साथ साथ अनुपातन बढ़ती रहती है। अपनी रूपहीनता के कारण उसे जो क्षति हो रही थी, उसका प्रथम एहसास उसे बैजल और सागर के स्पर्श के उपरांत होने लगता है। बैजल का पुरुष स्पर्श उसे अनजाने में प्राप्त होता है। निन्नी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। बैजल भी वहाँ आया था। बैजल संध्या नामक एक युवती को चाहता था। निन्नी संध्या की सहेली हो जाती है। दोनों में काफी घनिष्ठता हो जाती है। एक बार संध्या की साड़ी खराब न हो जाए इस दृष्टि से निन्नी भंडरिया में से पत्तल निकालने के लिए जाती है। तब अंधेरे के कारण बैजल निन्नी को संध्या समझते हुए उसे ताबड़तोड़ कई चुंबन दे डालता है। पुरुष के प्रेम और उष्मा का अनुभव निन्नी को तब होता है। बैजल द्वारा बाहु पास में कसना और उसके अधरों और होठों पर चुंबनों का कसना उसकी स्मृति में बार बार उभरते हैं, और तब उसकी मानसिक यंत्रणा और भी बढ़ जाती है। उसके बाद लघुता ग्रंथि के कारण उसके मन में जो मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं, उनके तहत वह पुरुष स्पर्श के नए नए नुस्खों को टोहती रहती है। पुरुष स्पर्श को प्राप्त करने के लिए वह जानबूझकर भीड़ वाले स्थानों पर जाना पसंद करती है। उसकी मनस्थिति निम्नलिखित काव्य पंक्तियों सी हो जाती है। इन्वर्टेड कॉमापन, वयस हुई कुछ उभरे पड़ी टकराहट की चाट, जाय परस की आस में मंदिर मेला हाट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ डॉक्टर पारुकांत देसाई, सतसई, पृष्ठ संख्या 12। पैराग्राफ चेंज। निन्नी की इस विकृति या कमजोरी का भरपूर लाभ सागर नामक एक युवक उठाता है। वह उसके पड़ोसी त्रिपाठी का भतीजा है। सस्ती बाजारू किताबों के द्वारा वह निन्नी को अपनी ओर आकृष्ट करता है। उसका उद्देश्य निन्नी को भोगना मात्र है। उसके लिए वह मन बहलावन का साधन मात्र थी। उसके इस छद्म व्यवहार का पता निन्नी को तब चलता है जब वह छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल कहकर निन्नी की क्रूरता का क्रूर उपहास करता है। वस्तुतः उसके व्यवहार के कारण निन्नी यह समझने लगती है कि सागर उसे सचमुच में प्यार करता है। अतः अपनी स्त्री सहज भावना से प्रेरित होकर वह उससे क्रीम की एक शीशी लाने का अनुरोध करती है। उसकी अन्य सहेलियों को उनके प्रेमी ऐसे ही उपहार देते थे। अतः निन्नी के मन में भी यह लालसा जगी थी, परंतु उसके अनुरोध करने पर सागर जब उसका क्रूर मजाक उड़ाता है, तब उसके सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। पैराग्राफ चेंज। सागर के पश्चात निन्नी का परिचय दर्शन नामक एक युवक से होता है, जो उसके भाई का मित्र है। दर्शन चित्रकार है। निन्नी के प्रति उसका व्यवहार खुला, साफ और निखालस है। पृष्ठ संख्या 147। दर्शन के उन्मुक्त व्यवहार को देखकर निन्नी फिर एक बार सपनों का नीड़ बनाने को तत्पर होती है, परंतु दर्शन किसी और से प्रेम करता है। निन्नी को यह जानकर बड़ा दुख होता है और वह आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन का अंत कर देना चाहती है, परंतु उसी समय दर्शन निन्नी को पुनः मिलता है और एक नए सौंदर्य बोध से उसे परिचित कराते हुए जीवन के प्रति आस्था जगाता है। वह निन्नी को समझाता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अनुपात सुंदरता नहीं है। अनुपात के पीछे से उद्भासित होने वाला प्राण, प्रसन्न उत्साह और आस्था ही सौंदर्य है। मगर निन्नी, यह तुम्हारी नहीं, हम सबकी ट्रेजेडी है कि हम सुंदरता के उपादानों को ही सुंदर समझते हैं, कि ढले ढलाए अवयव नाक नक्शा ही सुंदर है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राजेंद्र यादव, अनदेखे अनजान पुल, पृष्ठ संख्या 145। दर्शन के इस नवीन सौंदर्य बोध विषयक विचारों से निन्नी प्रभावित होती है। अपने पड़पड़ाए सूखे होठों पर दर्शन का चुंबन पाकर वह आत्मविश्वास से भर जाती है। मनुष्य का शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं, उसका आत्मिक, मानसिक और कार्य व्यापार संपृक्त जीवन भी सौंदर्यमय हो सकता है। उसकी प्रतीति निन्नी में एक नए विश्वास को जगाती है। मनोवैज्ञानिक एडलर महोदय का विश्वास है कि मनुष्य अपने जीवन की किसी क्षति की आपूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में नामांकित होकर कर लेता है। इसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर निन्नी शारीरिक दृष्टि से असुंदर एवं कुरूप है, परंतु बुद्धि प्रतिभा की दृष्टि से वह बहुत ही तेज है। अतः अपने असौंदर्य की पूर्ति अपनी बुद्धि प्रतिभा के द्वारा वह करती है। पढ़ लिख कर भारत सरकार के एक उच्च पद पर आसीन हो जाती है। इस प्रकार उसकी लघुता ग्रंथि का समन प्रभुत्व ग्रंथि से हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। लेखक ने यह कहा है कि प्रस्तुत उपन्यास एक सत्य घटना पर आधारित है। लेखक की निन्नी से भेंट एक प्रवास के दरमियान हुई थी और निन्नी ने लेखक को अपनी कहानी इस शर्त पर सुनाई थी कि उसकी उपन्यास की नायिका का नाम निन्नी ही रखा जाए और उपन्यास को आत्मकथात्मक शैली में न लिखकर तृतीय पुरुष में ही लिखा जाए। डॉक्टर घनश्याम मधुब के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, संवेदनशीलता लघु उपन्यास का अपना विशेष गुण है और यह विशेषता इस कृति में है। वास्तव में निन्नी की कहानी एक अति सामान्य लड़की की कहानी है जो अपने मन की गहराइयों से अपने पार जाने के लिए पुल की खोज में है। यह पुल वह स्वयं है और इसका एहसास ही दर्शन है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी लघु उपन्यास डॉक्टर घनश्याम मधुब, पृष्ठ संख्या 126-27। डॉक्टर अर्जुन चौहान ने प्रस्तुत उपन्यास के संदर्भ में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, राजेंद्र यादव के अनदेखे अनजान पुल उपन्यास में कुरूपता की ग्रंथि से जकड़ी निन्नी और उसके अभावग्रस्त जीवन का चित्रण पाया जाता है, जो कि वर्तमानकालीन विषम आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राजेंद्र यादव के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन, डॉक्टर अर्जुन चौहान, पृष्ठ संख्या 63। डॉक्टर चौहान के उपर्युक्त कथन के पूर्वार्ध से तो सम्मत हुआ जा सकता है, परंतु उत्तरार्ध से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि निन्नी की समस्या मनोवैज्ञानिक अधिक आर्थिक सामाजिक कम है। उसके पिता की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी होती तब भी आवश्यक नहीं है कि उसे पति का सच्चा प्यार हासिल होता। कई बार ऐसे किस्सों में देखा जाता है कि लोग बाग आर्थिक लालच में पड़कर शादी तो कर लेते हैं, परंतु ईमानदारी से उसका निर्वाह न करने के कारण लड़की को मानसिक यंत्रणा के नरक से गुजरना ही पड़ता है। अतः निन्नी के संदर्भ में उसके जीवन विषयक अप्रोच को बदलने की आवश्यकता थी और वही लेखक ने किया। कुछ भी हो, यादव जी ने इसमें नारी जीवन के एक नए आयाम को चिन्हित करने का सन्निष्ठ प्रयास किया है।